हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। 135। आदित्य को जैसे एकदम से कुछ याद आया और वो रवि की तरफ देखते हुए बोला, अच्छा ये बताओ, नताशा का क्या हुआ? वो अब ऑफिस तो नहीं आ रही है ना? ध्यान ही नहीं रहा मुझे तो उसके बारे में पूछने का। ठीक है, डोंट वरी सर, ऑफिस से तो उसका सस्पेंशन पास हो गया था और अब वो अपने घर में ही हाउस अरेस्ट पर है। उसके अंकल को भी सब पता चल गया है और वो उसे कहीं भी जाने नहीं दे रहे। लेकिन वो जेल में भी नहीं है क्योंकि उसके अंकल भी काफी पावरफुल है और बड़े बड़े लोगों से पहचान रखते हैं। आदित्य जैसे ही नताशा के बारे में एक सवाल किया, रवि उसे किसी रटाए हुए तोते की तरह पूरी बात बता दिया। इतने ही अमीर है उसके अंकल, तो बैठाकर क्यों नहीं खिलाते अपनी ऐसी पागल साइको भतीजी को? बेवजह सिर दर्द मेरे ऑफिस में भेज देते हैं। पूरी बात सुनकर आदित्य नताशा को याद करते हुए मुंह बनाकर काफी हिकारत से बोला, क्योंकि उसे नताशा कभी भी बिल्कुल पसंद नहीं थी और शुरू में तो उसने बस उसको एक नॉर्मल एम्प्लॉय समझकर ही जॉब दे दी थी। लेकिन फिर बाद में उसकी हरकतें देखकर तो आदित्य उससे परेशान ही रहने लगा था। आपके ही चक्कर में ऑफिस आती थी वो सर, और बाकी ऑफिस तो उसके कपड़े और मेकअप पर इतना खर्च देखकर ही समझ जाता था कि सैलरी से ज्यादा तो खर्च करती है वो लड़की। जरूर उसका मकसद कुछ और ही था। रवि भी नताशा के बारे में याद करते हुए मुंह बनाते हुए उसी तरह ये सारी बातें बोला, अच्छा ठीक है, रहने दो उसे, वो जहाँ भी है बस वापस ऑफिस में नजर ना आए और मेरे रास्ते में दोबारा ना आए तो मुझे और कोई मतलब नहीं उससे, और उस लड़की की कोई बात भी नहीं, छोड़ो उसे, वैसे भी कम हंगामा नहीं करके गई वो। आदित्य रवि को नताशा के बारे में बात करने से मना करते हुए कहा, गई कहाँ सर, जबरदस्ती पुलिस अरेस्ट करके ले गई और धक्के मारकर निकाला गया है, फिर भी वो बेशरम लड़की कहाँ खुद से जाने वालों में से थी। आदित्य की बात सुनकर रवि फिर से धीमी आवाज में बुदबुदाते हुए नताशा की बुराई करते हुए ये सब कुछ बोला, जिसे आदित्य ने सुन लिया और सुनकर हल्का सा मुस्कुराया लेकिन और कुछ नहीं बोला। अक्षत जब कमरे से बाहर गया था तब नैना को ये सोचकर मन ही मन काफी गुदगुदी सी हो रही थी कि अक्षत जिस तरह उसकी फिक्र कर रहा था और उसका ख्याल रख रहा था, क्या बात थी। आखिर नैना को उसकी ऐसा तो कोई रिश्ता भी नहीं था, अभी एक हफ्ता ही हुआ होगा उन दोनों को मिले हुए, और ऐसे में अक्षत पता नहीं क्यों नैना की इतनी फिक्र कर रहा था। उसे खुद ही नहीं पता था तो वो नैना को क्या बताता, और सबसे ज्यादा क्यूट तो अक्षत नैना को उस वक्त लग रहा था जब सामने से ये सारी केयर और उसके लिए फिक्र छिपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इतना अच्छा एक्टर होने के बाद भी अपनी रियल फीलिंग्स छिपा नहीं पा रहा था, और नैना को कहीं ना कहीं अपने लिए फिक्र उसकी आंखों में नजर आ रही थी। और अभी जब अक्षत कमरे में नहीं था फिर भी नैना उसके बारे में ही सोच रही थी, और उसे अपनी हालत भी अब पहले से बेहतर लग रही थी। वो उठकर बैठ गई थी, तभी अक्षत अपने हाथ में सूप का बाउल रखे हुए एक ट्रे पकड़े हुए कमरे के दरवाजे से अंदर आया, और वो काफी ज्यादा सावधानी से अपने हाथ में वो ट्रे पकड़े हुए था और उसका पूरा ध्यान भी गर्म सूप पर था कि कहीं वो सूप उसके हाथों से गिर ना जाए, क्योंकि अक्षत के घर में इतने सारे मेड और सर्वेंट थे तो वो ऐसा कोई काम जल्दी नहीं करता था। यहाँ तक कि अपना खाना देकर भी वो कभी रूम में खुद नहीं आता था। आज पहली बार ही था कि वो किसी के लिए कोई खाने पीने का सामान खुद लेकर यहाँ तक आया था, और नैना की भी नज़र जैसे अक्षत पर पड़ी उसे वो ऐसे ध्यान से चलकर अंदर कमरे की तरफ आता हुआ काफी ज्यादा क्यूट और अट्रैक्टिव साथ में ही लगने लगा। तो अक्षत की तरफ देखते हुए नैना के मन में कई सारी धुन एक साथ बजने लगी और वो बिना पल के गाए एक टक अक्षत की तरफ ही देखने लगी। तेरे सामने आ जाने से ये दिल मेरा धड़का है, ये गलती नहीं है तेरी, कुसूर नजर का है, जिस बात का तुझको डर है वो करके दिखा दूंगा, ऐसे ना मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा, तुमको मैं छुपा लूंगा, तुमसे दिल में छुपा लूंगा।
अक्षत आकर नैना के सामने ही बैठ गया और उसे भी ठीक से आराम से टेक लगाकर बैठने को कहा। मैं ठीक हूँ अक्षत, प्लीज तुम ये सब, नैना उसे अपनी तरफ से बताते हुए बोली। तभी अक्षत आगे बढ़कर उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी और एकदम धीरे से उसके कान के पास जाकर बोला, श्श, बिल्कुल चुप, वो तो दिख ही रहा है मुझे कितना ठीक हो तुम, चुपचाप सूप पियो और रेस्ट करो, और कुछ नहीं, सुन लूंगा मैं। अक्षत नैना से ये बात काफी ज्यादा हक से बोला और नैना को भी पता नहीं क्यों उसका ये खुद पर हक जताना बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि उसके हक में उसे सिर्फ फिकर और प्यार नजर आता है। बिल्कुल भी बॉसी नेचर या फिर कंट्रोल करने की तरह से वो ये बात नहीं बोला। और ये बात सुनकर नैना फिर से अपनी बड़ी बड़ी आंखें फैलाकर अक्षत के चेहरे की तरफ ही देखने लगी और उसमें कहीं खो सी गई।
तुमसे पहले तुमसा कोई हमने नहीं देखा, तुम्हें देखते ही मर जाएंगे ये नहीं था सोचा। बाहों में तेरी मेरी ये रात ठहर जाए, तुझ में ही कहीं पे मेरी सुबह भी गुजर जाए। जिस बात का तुझको डर है वो करके दिखा दूंगा, ऐसे ना मुझे तुम देखो सीने से लगा लूंगा, तुमको मैं छुपा लूंगा तुमसे दिल में छुपा लूंगा।
अक्षत आकर नैना के सामने ही बैठ गया और उसे भी ठीक से आराम से टेक लगाकर बैठने को कहा। मैं ठीक हूँ अक्षत, प्लीज तुम ये सब, नैना उसे अपनी तरफ से बताते हुए बोली। तभी अक्षत आगे बढ़कर उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी और एकदम धीरे से उसके कान के पास जाकर बोला,
श्श, बिल्कुल चुप, वो तो देख ही रहा है मुझे कितना ठीक हो तुम, चुपचाप सूप पियो और रेस्ट करो, और कुछ नहीं, सुन लूंगा मैं।
अक्षत नैना से ये बात काफी ज्यादा हक से बोला और नैना को भी पता नहीं क्यों उसका ये खुद पर हक जताना बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि उसके हक में उसे सिर्फ फिकर और प्यार नजर आता है। बिल्कुल भी बॉसी नेचर या फिर कंट्रोल करने की तरह से वो ये बात नहीं बोला। और ये बात सुनकर नैना फिर से अपनी बड़ी बड़ी आंखें फैलाकर अक्षत के चेहरे की तरफ ही देखने लगी और उसमें कहीं खो सी गई।
तुमसे पहले तुमसा कोई हमने नहीं देखा, तुम्हें देखते ही मर जाएंगे ये नहीं था सोचा। बाहों में तेरी मेरी ये रात ठहर जाए, तुझ में ही कहीं पे मेरी सुबह भी गुजर जाए। जिस बात का तुझको डर है वो करके दिखा दूंगा, ऐसे ना मुझे तुम देखो सीन से लगा लूंगा, तुमको मैं छुपा लूंगा।
अक्षत और नैना का चेहरा इस वक्त एक दूसरे के एकदम आमने सामने था और अक्षत भी नैना की आंखों में कुछ देर के लिए खो सा गया। उसे हमेशा ही नैना की आंखें काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगती थीं और अभी वो खुद नहीं समझ पा रहा था कि उसे नैना के बीमार होने पर खुद इतनी ज्यादा तकलीफ क्यों हुई थी। तभी उसे अपनी पोजिशन का एहसास हुआ तो नैना की तरफ देखते हुए वो उसके होठों पर से अपनी उंगली हटाया और धीमी आवाज में सॉरी बोलते हुए उससे कुछ दूर हुआ और फिर उसके सामने बैठकर उसे अपने हाथों से वो सूप पिलाने लगा। नैना भी चुपचाप अक्षत की तरफ देखते हुए अपना मुंह खोलकर सूप पीने लगी और उसके बाद अक्षत ही उसे मेडिसिन खिलाया और उसे वहीं पर रेस्ट करने को बोला और खुद भी वहां पर ही बैठा रहा। और फिर जब वो उठकर जाने लगा तब तक नैना सो गई, लेकिन नींद में नैना ने कसकर अक्षत का हाथ पकड़ा हुआ था। तो नैना को अपना हाथ इस तरह पकड़े देखकर अक्षत अपने और नैना के हाथ की तरफ देखकर मुस्कुराया और अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश भी नहीं किया और चुपचाप उसके बगल में बैठे बैठे ही सो गया। क्रमशः